श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
कछु ना भरोसा इस जीवन का, करो भजन अब प्रभु यीशु का।
कछु न भरोसा इस जीवन का, करो भजन अब प्रभु यीशु का।
कछु न भरोसा इस जीवन का,
बालकपन को खेल पहेली, जवानी भी सब पापों में भूली। बालकपन तो खेल पहेली, जवानी भी सब पापों में भूली। व्यर्थ ही व्यर्थ है जो बन जवानी का, करो भजन अब प्रभु यीशु का। कछु ना भरोसा इस जीवन का,
व्यर्थ ही व्यर्थ है धन और भूमि। करो भजन अब प्रभु यीशु का, कछु ना भरोसा इस जीवन।
प्रिय मित्र, प्रविष्य के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं, और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको फिर से बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से जकरिया नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, और इस पुस्तक में हम देख रहे हैं कि जकर्याह ने जो दर्शन देखे हैं उसे किस प्रकार वो हमारे सामने रख रहा है। मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय अलग अलग स्थानों पर रेडियो के निकट आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दें ताकि प्रभु हर एक श्रोता अपने जीवन में आपके वचन को समझकर ग्रहण करने पाए। हर एक प्रकार की बुराइयों से, बुरी संगति से, बुरी बातों से आप उसकी रक्षा करें ताकि प्रत्येक जीवन पवित्रता का जीवन जीने पाए, आपके सत्य को पहचान कर आपकी ओर अपने जीवन को लाने पाए। इस घड़ी फिर से हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में है, निराश और परेशान है, चिंता और तनाव में है, प्रभु जी आप उन्हें भी छुएं, उनके जीवन में शांति दे और उन्हें चंगाई प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम जकर्याह की पुस्तक में देख रहे थे जो उसने दर्शन देखे हैं। हमने जकर्याह के 6 दर्शनों पर मनन किया है और अब 7वां दर्शन हमारे सामने है। उसके पिछले 6 दर्शनों में हम देखते हैं कि एक कहानी उभर रही है। उसने देखा, पहला मेहदी में एक घुड़सवार खड़ा है, दूसरा 4 सिंह, तीसरा 4 लोहार, चौथा नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष और पांचवा यहोशू और शैतान तथा छठवां शाख और 7 आंखों वाला पत्थर। पहले 4 दर्शनों में बेबीलोन की बंधुआई से इसराइल की मुक्ति व्यक्त की गई है। ये दर्शन इसराइल के भावी विस्थापन का भी विचार प्रकट करते हैं। आज ऐसा ही है, पर वे प्रभु यीशु के आगमन पर एकत्र किए जाएंगे। 5वां और 6ठा दर्शन मन के उद्धार के बारे में है। महायाजक यहोशू के मैले वस्त्र, परमेश्वर ने महायाजक यहोशू के मैले वस्त्र उतरवाकर उसे स्वच्छ वस्त्र पहनाए। यह स्वदेश लाए गए चुने हुए लोगों के निश्चित उद्देश्य की कहानी सुनाते हैं। वे पाप के कारण परमेश्वर के काम में नहीं लिए जा सकते हैं, उन्हें शोधन अर्थात शुद्धि की आवश्यकता है, परंतु उनकी धार्मिक व्यवस्था उनका शोधन नहीं कर पाएगी। यह शोधन कार्य बाहर से किया जाएगा। यशाया नबी की पुस्तक 1 अध्याय के 18 पद में परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर स्वयं निष्कलंक एवं निर्दोष मेमने के रूप में है, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उद्धार प्रदान करता है। शोधन का अर्थ है पापों से शुद्ध किया जाना। तीतुस की पत्री 3 अध्याय के 5 पद में पौलुस कहता है, उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। जी हाँ, हम अपने अच्छे और भले कार्यों के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चाहे हम जितने भी अच्छे और भले कार्य करें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सम्मुख मैले चिथड़ों के समान हैं। इसलिए हम स्वयं से उद्धार नहीं पा सकते। यहोशू का शोधन हो जाने के कारण आप सोचेंगे कि अब वह सेवा के लिए तैयार है। जी नहीं, अभी वह तैयार नहीं है। अब हम सोने के दीपदान का दर्शन देखेंगे जो यहोशू द्वारा महायाजक के कर्तव्य पूरा करने के विषय में है। तो आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दीपदान और जैतून वृक्षों का दर्शन। जकर्या की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। मेरे मित्रों, मैं फिर कहता हूं कि दर्शन देखते समय जकर्या जाग रहा था, वह सोया नहीं था। अब 6 दर्शन देखने के बाद उसे नींद का झोंका आता है, अतः स्वर्गदूत उसे जगाता है, क्योंकि यह दर्शन उसका स्वप्न नहीं होना है, क्योंकि सोने के बाद उसे स्वप्न कहा जाता है, परंतु यह दर्शन था। जकर्या 4:2 में हम आगे पढ़ते हैं, उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां बनी हुई हैं। यह 7 दीपों का दीपदान था जो मंदिर के पवित्र स्थान में था। आज यह इसराइल का प्रतीक है, जैसे जलती हुई झाड़ी, दाखलता, जैतून का वृक्ष। यहां यह दीवट या दीपदान इसराइल को दर्शा रहा है। मंदिर में यह दीपदान अति सुंदर सामान में से एक था। यह सोने का था और हाथ से बनाया हुआ था। उसकी रचना दक्ष हस्तकार बेजालील ने की थी। एक मुख्य स्तंभ के दोनों ओर 3-3 शाखाएं ऊपर की ओर जा रही थी, जिनके सिरे पर बादाम के फूल बने हुए थे। इन 7 फूलों में दिए रखे जाते थे। इस दीपदान में दिए सदा जलते रहते थे। यह काम महायाजक का था, उसे उनमें तेल डालना और बत्ती को काटकर संवारना होता था। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमारा महायाजक प्रभु यीशु इस दीपदान के मध्य चलता हुआ दिखाया गया है। ये 7 दीप एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं का प्रतीक हैं। उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे अपने पापों से मन फिराएं, अन्यथा प्रभु उनके दीवट हटा देगा। उसने ऐसा ही किया। तुर्किस्तान में आज उन आराधनालयों के खंडहर हैं, परंतु यहां दीपदान इसराइल का प्रतीक है। इसराइल भविष्य में परमेश्वर का गवाह होगा। यहां पर लिखा है, उसका कटोरा उसकी चोटी पर है। यह मूसा के निर्देशों में नहीं था जब वह दीपदान बनाने के निर्देश दे रहा था। ये कटोरे तेल से भरकर रखे जाते थे, जिनमें से तेल अपने आप दियों में जाता रहता था। यह बात की खोज है और यहां मुख्य विषय तेल है। मेरे प्रियो, दीपदान प्रभु यीशु का और तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हैंगस्टन बर्ग की टीका है कि तेल से अच्छा पवित्र आत्मा का प्रतीक और कोई नहीं है, और दीपकों से निकलने वाली ज्योति प्रभु यीशु का प्रतीक है। वह जगत की ज्योति है। यह दीपदान जो मंदिर में था प्रभु यीशु मसीह का सर्वोत्तम प्रतीक है। दीपदान की लंबाई चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि परमेश्वरत्व को नापना असंभव है। जी हां, स्वर्गरोहण से पूर्व प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से प्रतिज्ञा की थी कि वह उनके लिए पवित्र आत्मा भेजेगा, एक सहायक देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 13-14 पद में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरे प्रियो, इस दृष्टिकोण के साथ दीपदान को आप देखें। दीपदान दीपकों के जलने में सहायक था और दीपक की ज्योति उस दीपदान की सुंदरता को प्रकाशित करती थी। इसी प्रकार पवित्र आत्मा अपने बारे में नहीं वरन प्रभु यीशु की महिमा और सुंदरता का वर्णन करता है। जकर्या की पुस्तक 4:3 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, दीवट के पास जैतून के दो वृक्ष हैं, एक उस कटोरी की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाई ओर। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, जकर्या के युग में दो जैतून के वृक्ष थे, जरुबाबेल जो राजसी वंश से था और यहोशू जो महायाजक था। परमेश्वर इन दो मनुष्यों के द्वारा इसराइल राष्ट्र को पुनः ज्योतिर्मय करेगा और इसराइल को जगत की ज्योति बनाएगा। जैतून का तेल, जैसा मैंने पहले कहा है, पवित्र आत्मा का प्रतीक है। यह भविष्यवाणी भावी महाक्लेश से संबंधित है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11:3-4 में आप इसे स्पष्ट होते हुए देखते हैं। कहता है, मैं अपने दो गवाहों को अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। महाक्लेश के समय पृथ्वी पर से परमेश्वर अपना हाथ हटा लेगा और इस कारण ख्रिस्त विरोधी प्रभु के प्रत्येक गवाह का मुंह बंद कर देगा, परंतु दो गवाह चुप ना होंगे। परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि दो गवाहों द्वारा पुष्टि की जाएगी तो वह सच होगी। परमेश्वर कहता है कि वह ऐसी स्थिति कभी नहीं आने देगा कि उसके गवाह न रहें। महाक्लेश के युग में ये दो गवाह होंगे। अब यह दो गवाह कौन होंगे? एक तो मेरे विचार में एलिया है और दूसरा कौन है स्पष्ट नहीं है, मूसा, हनोक, यहोना बपतिस्मा देने वाला या अन्य कोई। यहां उनकी पहचान की अपेक्षा मुख्य बात तो यह है कि उस समय परमेश्वर दो गवाह खड़े करेगा जो पवित्र आत्मा के सामर्थ में घोषणा करेंगे। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो भविष्य से संबंधित है। जैसे जकर्याह के युग में उसने जरुबाबेल और यहोशू को काम में लिया है। मेरे मित्रों, जकर्याह के दर्शन प्रगति चरण पर हैं, जो एक कहानी सुनाते हैं। उन्हें एक साथ रखने से वे एक अति सुंदर चित्र को प्रकट करते हैं। परमेश्वर ने स्वदेश लौटने वाले इसराइलियों के प्रोत्साहन के लिए जकर्याह को ये दर्शन दिखाए थे, उनका बंधुआई में जाना और 70 वर्ष बाद स्वदेश को लौटना परमेश्वर की योजना में था और एक उद्देश्य के निमित्त था। अब स्वदेश में उन्हें पापों से शुद्ध होकर परमेश्वर के साथ उचित संबंध बनाने थे, जिससे कि वे परमेश्वर के प्रभावी गवाह बने। यद्यपि जकर्याह के दर्शन की पूर्ति हो चुकी थी, वे दूर भविष्य से ही संबंधित हैं। इन दर्शनों की पूर्ति वास्तव में तब होगी जब प्रभु राज में सब इसराइली अपने देश में होंगे। उस दिन परमेश्वर उनका शोधन करेगा। जकर्याह के पुस्तक की 13 में हम देखेंगे कि दाऊद के वंश के लिए और सब यरूशलेम वासियों के लिए शोधन के एक सोता फूट निकलेगा। वे शुद्ध किए जाने के बाद संसार के लिए ज्योति बन जाएंगे। उनके लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। जी हाँ, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32:8 में लिखा है, जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इसराइलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। परमेश्वर ने इसराइलियों की गिनती के अनुसार देश देश के लोगों की सीमाएं क्यों ठहराई? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वे उसके गवाह हों। इसराइल देश भूमि का एक अति संवेदनशील भाग है। परमेश्वर ने उस स्थान को चुना है क्योंकि वह तीन महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप के केंद्र में है, और यही कारण है कि वहां इतनी अधिक समस्याएं हैं। और जब तक इसराइल परमेश्वर के वचन के प्रचार का नहीं बनता, समस्याएं आती ही रहेंगी। यहेजकेल नबी की पुस्तक 5:5 में लिखा है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच ठहराया और वह चारों ओर देशों से घिरी है। क्यों? गवाह होने के लिए। भविष्य में वह देश इस संसार के आने वाले लोगों के बीच में कोने कोने में गवाह होगा। मेरे मित्रों, मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि इसराइल के 25वें स्थापना दिवस के समय वह वहां था। उसने चारों ओर दीपदान देखे। वह अंजीर के पेड़, दाखलता और जैतून के वृक्ष का चित्रण कहीं कहीं दिखाई नहीं देता है, जैसा कि हम देखते हैं और पढ़ते हैं। एक दिन वे अवश्य ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार संसार में परमेश्वर के गवाह होंगे। पूर्व काल में इसराइल से चूक हुई थी और आज कलीसिया से चूक हो रही है। प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि हम पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार सुनाएं। प्रेरितों के काम 1:8 के अनुसार, परंतु अभी अनेक जातियों में सुसमाचार नहीं पहुंचा है। मैं प्रसन्न हूं कि हमारे रेडियो प्रचार के द्वारा दूर दूर के लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और सत्य को जान रहे हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। मुझे एक ऐसे ही दूर स्थान से पत्र मिला जिसमें लिखा था कि एक ग्रामवासी ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और तुरंत सुसमाचार सुनाने लगा। क्यों? क्योंकि वह कोई प्रचारक नहीं पहुंचा था। उस स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो सत्य को जानकर लोगों को बताए। वह व्यक्ति वहां प्रभु की ज्योति बन गया। मेरे प्रियो, भविष्य में इसराइल संसार के हर कोने में परमेश्वर का गवाह होगा और यरूशलेम से परमेश्वर का वचन प्रवाहित होगा। यशायाह की पुस्तक 2:2-3 में लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर एक जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। मेरे मित्रों, यह समय दूर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए। वह चाहता है कि हर एक मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे। वह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश किया जाए। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन है जो सत्य है और अब तक पूरा होता आ रहा है। इन सत्यों को भी हम बहुत ही जल्द अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने इस बात को अवश्य ही जान लिया है कि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि प्रत्येक जीवन बचाए जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 22600001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
यीशु तेरा प्यार कितना सुंदर है, कितना मधुर है। यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार। सच की तू ही पहचान,
यीशु सच की तू ही पहचान कितना